कोई तकलीफ है तो मुझे बताएं। शत्रुपा देवी ने नम आंखों के साथ आंखें खोलकर विक्रम की तरफ देखा। वाह वाह आ आ। शत्रुपा देवी अखिल के बारे में पूछना चाह रही थी। क्या विक्रम ने अखिल से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश की है? क्या अखिल उससे मिला है? पर विक्रम उनका इशारा समझ नहीं पाया। आप आशी के बारे में पूछ रही हैं, वो दूसरी गाड़ी में है। चलिए घर चलते हैं, सब एक साथ ही वहां पहुंचेंगे। विक्रम ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया। बहुत दुख अफसोस के साथ शत्रुपा देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। सामने गुस्से में वैशाली बंजारन कभी शत्रुपा देवी की तरह ऐसे देखती थी जैसे कि कबाब में हड्डी पड़ गई हो, मनपसंद भोजन खाते खाते मुंह में कंकर पड़ गया हो, तो फिर बहुत ही प्यार से विक्रम की तरफ देखने लगती थी जैसे कि एक शिकारी अपने शिकार को ललचाई नजरों से देखता है। शत्रुपा देवी से ये सब देखना बर्दाश्त से बाहर था, पर वो अब कर भी क्या कर सकती थी? अब तो बस इन आंखों को इंतजार था, उम्मीद की उस किरण का इंतजार था जो शायद कुछ ठीक कर सके। सच कहा था वैशाली ने कि मैं अब अपनी आंखों का इंतजार तुम्हारी आंखों में भर दूंगी। अपना कहा हुआ उसने कर दिखाया था, पर अभी भी इस भगवत प्रेमी हृदय में एक आस लगी हुई थी। वैशाली की बातों से उन्होंने इतना तो जरूर अनुमान लगा लिया था कि ये अखिल से डरती है। अगर विक्रम के साथ इसका पूर्व जन्म का कोई कांटेक्ट है, 63 कुन के मिलने वाला कांटेक्ट, तो अखिल के साथ भी कुछ कांटेक्ट है जो कि 36 का आंकड़ा बनता है। हाथ पैर ठीक रहते तो वो अखिल को खोजती भी, पर अब तो मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। कैसे किसी को बताती कि कोई अखिल को बुला दे? अब तो बस इंतजार ही नसीब में लिख गया था। इधर अखिल प्रताप की गाड़ी दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी थी। उन्हें वापस आज फिर न्यूयॉर्क के लिए निकलना था, लेकिन जाने क्यों उनके कदम एरोड्रम के अंदर जाने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। गाड़ी में बैठे बैठे वो अपनी ही सोच में डूबे हुए थे, जबकि ड्राइवर ने दो बार उनसे कह दिया था कि सर हम पहुंच गए। आंखें बंद करके उन्होंने अपनी एक सिद्ध देवी शक्ति भद्र को पुकारा। बड़ी उलझन में हूँ हे देवी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। दिव्य शक्ति तुरंत उनके मानस पटल पर प्रकट हो गई थी। कभी भी कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट केवल साइंटिफिक बुक को पढ़कर इस फील्ड में अपना नाम पहचान नहीं बना सकता, क्योंकि किताबें केवल बेसिक नॉलेज देती हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज तब तक नहीं मिलता जब तक कि आप उस क्षेत्र में उतरते नहीं हैं। पढ़कर केवल पढ़ाया जा सकता है, इस सब्जेक्ट के प्रोफेसर बना जा सकता है, बड़े बड़े लेक्चर दिया जा सकता है, पर फील्ड में उतरने से पहले इस क्षेत्र की हर एक न्यूनतम और अधिकता का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी आपके लेक्चर से निकला हुआ हर एक शब्द सुनने वाले के दिल और दिमाग दोनों को स्पर्श करता है, क्योंकि वो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि होती है। ये वो ज्ञान होता है जो कि आपने अपने अनुभव से अर्जित किया होता है। ज्योतिष शास्त्र भी इसी तरह की विधा है। अगर किताब पढ़कर सब लोग हाथ देखने लगते तो आज भारतवर्ष में गूगल बाबा की मदद से हस्तरेखा विशेषज्ञों की संख्या दोगुनी होती, पर ऐसा होता नहीं है। किताब पढ़कर आप 50% प्रेडिक्शन सही कर सकते हैं, पर 50% गलत ही होती है। 90 से ऊपर % पहुंचने के लिए किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक शक्तियों का मार्गदर्शन भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब ये आध्यात्मिक शक्तियाँ आपके अनुकूल होती हैं तो आप अपने फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए उन लोगों के प्रेडिक्शन 100% सही होते हैं जो कि बेसिक नॉलेज के साथ साथ पूजा पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों के द्वारा अपना ऑरा मजबूत करते हैं। अखिल प्रताप के साथ भी यही था। तभी तो मात्र 35 साल की उम्र में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के रूप में वो उस जगह को प्राप्त कर चुके थे जो कि 35 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस रखने वालों के पास भी नहीं थी। कहिए किस उलझन में है? भद्र ने पूछा। माता आप तो सब कुछ जानती हो, छोटे भाई का बुलावा राजगढ़ से आया है। वो राजगढ़ जो कि अब हमारे लिए अतीत के पन्नों में दर्ज हो गया, वो घर वो परिवार आज से 20 साल पहले हमने छोड़ दिया था, या फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया। कारण चाहे जो भी हो मैं वहां जाना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से छोटे भाई ने पत्र लिखकर हमें पुकारा है कि हम उसे अनदेखा भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूँ माता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्या करूँ? वही करो जो तुम्हारा हृदय कहता है, देवी भद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ये समय हृदय की पुकार सुनने का नहीं है माता, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। अखिल प्रताप ने अपने मन में ही भद्र देवी के आगे हाथ जोड़ दिए थे। हमारे जीवन में हमारे जन्म से पूर्व ही हमारे कर्तव्य निश्चित हो जाते हैं देव। आपका जन्म जिस कार्य के लिए हुआ उसको पूर्ण करने का अवसर आ गया है। आपके पूर्व जन्म का कर्तव्य क्षेत्र ही आपके इस जन्म के कर्तव्य क्षेत्र में से भी एक है, अतः मेरे सुझाव के अनुसार वहां आपको अवश्य जाना चाहिए, देवी भद्र ने कहा। अखिल प्रताप ने कुछ उलझन के साथ उनकी तरफ देखा। भद्र देवी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट तैर गई थी। वैसे तो मैं आपकी सिद्ध शक्ति हूँ और आपके हर एक उलझन के समाधान के लिए ही आपके साथ उपस्थित हूँ, परंतु कुछ रास्ते आप स्वयं तय करें तो ये ज्यादा उचित होगा। आप वहां जाएं, वहां की चीजों को समझें और फिर जहां ना कुछ समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, देवी भद्र बोली। अर्थात आपके कहने का मतलब है कि हमारे पूर्व जन्म का कोई हिस्सा वहां पर है? अखिल प्रताप ने समझते हुए पूछा। हर हर महादेव।